ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। भाषा साहित्य और संस्कृति का प्रवर्धन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का कथन। राष्ट्रीय सभा में विनियोजन विधेयक 2079 के विभिन्न शीर्षकों के ऊपर सांसदों की धारणा रखने का दौर हुआ संपन्न। आसन्न संघ और प्रदेश निर्वाचन के लिए श्रावण 15 गत्ते के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। और अफगानिस्तान में भूकंप, भारी बारिश और बदहाल व्यवस्था के कारण बचाव अभियान में हो रही मुश्किलें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि देश की भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन का प्रवर्धन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 65वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2079 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि नेपाल की सभी भाषाओं, संस्कृति और दर्शन का प्रवर्धन करने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा आगे बढ़ाए गए नई सोच और कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा यानी कि नेपाली वाङ्मय के विराट प्रतिभा वाले कवि कुंज को संग्रहालय के रूप में रूपांतरण करने का प्रतिष्ठान का काम प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। बैठक में सांसदों ने बिजली के प्रयोग को बढ़ाकर पेट्रोलियम आयात को कम करने की बात कही। बैठक में सांसद भैरव सुंदर श्रेष्ठ ने विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय शीर्षक के खर्च रकम को घटाकर 1 रूपये कायम करने का सुझाव देते हुए खर्च कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी तरह बैठक में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव ने रेलवे विधेयक 2079 पेश की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने नेपाल प्रहरी और प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण और समन्वय प्रथम संशोधन विधेयक 2079 को दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समिति में भेजा है। बैठक में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी तरह बैठक में वन तथा भू संरक्षण मंत्री राम सहाय प्रसाद यादव ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की GGGI सहभागितामूलक सदस्य के रूप में नेपाल को सदस्यता प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी समझौता प्रस्तुत किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री की ओर से कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आर्थिक वर्ष 2077-78 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश किया था। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक आषाढ़ 12 गते रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने विष्णु पुकार श्रेष्ठ को जनवादी गणतंत्र चीन के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि आसन्न संघ और प्रदेश के चुनाव में माओवादी केंद्र बगैर गठबंधन के अपनी पैरों खड़ी होगी। माओवादी केंद्र जिला समन्वय समिति ललितपुर द्वारा आज आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने पार्टी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि आगामी श्रावण 15 गते के भीतर आसन्न संघ और प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि भावी पीढ़ी को ज्ञान हस्तांतरित करते और इतिहास को जीवित रखने के लिए पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में बुलाई गई पुस्तकालय संघ के पदाधिकारियों के साथ अंतरक्रिया के दौरान राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल में सार्वजनिक और निजी पुस्तकालयों को आधुनिकीकृत करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल में मौजूदा ऐतिहासिक पुस्तकालयों के संरक्षण के लिए बौद्धिक वर्ग को सक्रिय होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेशों और स्थानीय तहों को भी पुस्तकालय के निर्माण और संरक्षण पर ध्यान देना होगा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में परिवर्तन लाने में टंक प्रसाद का योगदान महत्वपूर्ण साबित हुआ है। टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं, सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाँकी समाचार। जनकपुर धाम में आज से राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन 2079 शुरू हुआ है। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने कहा कि मध्य प्रदेश में विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र के विकास के लिए हर का सहयोग करने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने कहा कि देश में अनुसंधान और रोजगारी का उचित माहौल न होने से देश के वैज्ञानिक विदेश जाने पर मजबूर है। राष्ट्रीय युवा परिषद के आयोजन में दो दिनों के राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में विज्ञान प्रविधि के विकास तथा युवा वैज्ञानिकों की स्थिति लगायत के विषय में विचार विमर्श होगा। ये जानकारी राष्ट्रीय युवा परिषद के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत ने दी। सुरखेत की वीरेन्द्रनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 तातापानी स्थित एक टर्की फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपंछी विकास निर्देशनालय सुरखेत के प्रमुख प्रचंड खड़का से मिली जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक टर्की मरने के बाद नमूना परीक्षण के लिए केंद्रीय पशुपंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमांडू भेजा गया और परीक्षण के बाद उक्त फार्म में टर्की में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन कार्यालय में रहे बर्ड फ्लू नियंत्रण समिति की आकस्मिक बैठक ने 4 किला तय कर टर्की मुर्गे को नष्ट करने का निर्देश किया। प्रमुख जिला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल ने कहा कि बर्ड फ्लू न फैलने देने के लिए सुरखेत के किसानों को सचेत किया गया है। स्थानीय तहों में वित्तीय व्यवस्थापन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य के साथ बनाए गए सूत्र मोबाइल ऐप की आज काठमांडू में औपचारिक शुरुआत की गई। नेपाल के लिए ब्रिटिश राजदूत निकोला पालिट ने ऐप को आज महालेखा नियंत्रक सुमन राज कार्यालय को हस्तांतरित किया और आज ही इसकी औपचारिक शुरुआत भी की गई। मौके पर राजदूत पालिट ने कहा कि स्थानीय सरकार की आर्थिक गतिविधियों को ऐप के जरिए आप नागरिक आसानी से देख पाएंगे। वहीं महालेखा नियंत्रक सुमन राज अर्याल ने विश्वास जताया कि इससे आर्थिक पारदर्शिता स्थापित होगी। आने वाले सावन महीने से कचरे का अगर घर में वर्गीकरण नहीं किया गया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। काठमांडू महानगर पालिका ने कचरे के सहज व्यवस्थापन के लिए आगामी सावन 1 से सड़ने वाले और न सड़ने वाले कचरे को घर में अलग अलग जमा करने का महानगरवासियों से आग्रह किया है। काठमांडू महानगर पालिका ने आज एक सूचना जारी कर ऐसा आग्रह किया है। सूचना में वर्गीकरण न करने वालों से 500 रूपये का जुर्माना वसूलने की चेतावनी भी दी गई है। काठमांडू महानगर पालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राय से मिली जानकारी के मुताबिक कचरा संकलन के दौरान अलग अलग वर्गीकृत न पाए जाने पर हर उगाही में जुर्माना भरवाया जाएगा। पिछले दिनों कोरोना के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 49 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 12 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। बहरहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 163 है। वहीं आज 85,657 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई थी और इस आपदा ने समस्याओं को और गंभीर बना दिया है। इस आपदा से देश की संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुश्किल हालात के बीच तालिबान प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से मदद की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ उन संस्थाओं में शामिल है जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित पक्तिका प्रांत के सुदूर इलाकों में लोगों को रहने के लिए ठिकाने और भोजन मुहैया करा रहा है। पक्तिका प्रांत की राजधानी सरन में घायलों को खून देने का इंतजाम करते स्थानीय लोग समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा, हम लोग इस इलाके तक नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल है। बचाए गए लोगों और बचाव कर्मियों ने बीबीसी को बताया है कि जहां पर भूकंप का केंद्र था उसके आसपास के गांव, सड़क और मोबाइल फोन के टावर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। उन्हें आशंका है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मंगलवार और बुधवार की रात दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके आए थे जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। तालिबानी अधिकारियों के अनुसार इस आपदा में कम 1500 लोगों के घायल होने का अनुमान है। रिक्टर पैमाने पर 6.1 की तीव्रता से आए इस भूकंप ने मिट्टी और पत्थर से बने घरों को मलबों में तब्दील कर दिया है। मलबे में अभी भी सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाषा साहित्य और संस्कृति का प्रवर्धन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का कथन। राष्ट्रीय सभा में विनियोजन विधेयक 2079 के विभिन्न शीर्षकों के ऊपर सांसदों की धारणा रखने का दौर हुआ संपन्न। आसन्न संघ और प्रदेश निर्वाचन के लिए श्रावण 15 गते के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड का कथन। और अफगानिस्तान में भूकंप, भारी बारिश और बदहाल व्यवस्था के कारण बचाव अभियान में हो रही मुश्किलें। के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।